ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। लोकतंत्र और परिवर्तनकारी पक्ष के उम्मीदवारों को निर्वाचित कर लोकतंत्र के आधार स्तंभ को मजबूत बनाने का प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा की अपील। पांच दलीय गठबंधन के चुनावी तालमेल के निर्णय का क्रियान्वयन करने का पार्टी के सभी तहों और निकायों को सभापति देउवा ने दिया निर्देश। स्थानीय तह चुनाव के लिए 72 जिलों के लिए मतपत्रों की छपाई हुई पूरी। 33 जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र। और पुतिन की धमकी के बाद यूरोप के लिए रूस से आई एक और चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने कहा कि लोकतंत्र और परिवर्तनकारी पक्ष के उम्मीदवारों को निर्वाचित कर स्थानीय तह एक लोकतंत्र के आधार स्तंभ को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। आज एक अपील जारी कर प्रधानमंत्री देउवा ने संविधान और लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति को निर्वाचन के माध्यम से परास्त कर स्थानीय तह तक लोकतांत्रिक और परिवर्तनकारी आधार को मजबूत करना जरूरी है। अपील में कहा गया है कि पांच दलीय गठबंधन की अपरिहार्यता को आत्मसात करते हुए कांग्रेस के ही नेतृत्व में पांच दलों के बीच हुई चुनावी तालमेल की सहमति को क्रियान्वित करने के लिए पार्टी मुख्यालय के जरिए पार्टी के सभी तहों और निकायों को निर्देश किया जा चुका है। उन्होंने गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के अभियान में सक्रिय होने का पार्टी के सभी सदस्यों को आह्वान किया है। बैसाख 30 गते को होने वाले स्थानीय तह के चुनाव के लिए इसी बैसाख 11 और 12 गते को दर्ज उम्मीदवारों के मनोनयन पत्रों की जांच और उम्मीदवारों के विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर छानबीन का काम आज पूरा हुआ। मनोनीत उम्मीदवारों की नामावली संबंधित पालिकाओं में मौजूद निर्वाचन अधिकृतों के कार्यालय में आज ही प्रकाशित करने का कार्यक्रम होने की बात निर्वाचन आयोग से सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठ ने बताई। कल इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने व उम्मीदवारों की अंतिम नामावली प्रकाशन और परसों 17 गते को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने का कार्यक्रम है। निर्वाचन आयोग ने स्थानीय चुनाव के दिन यानी बैसाख 30 गते को देश भर में सार्वजनिक छुट्टी देने का सरकार से आग्रह किया है। आयोग ने आज काठमांडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ऐसा आग्रह किया। साथ ही मतदान और निर्वाचन संबंधी व्यवस्थापकीय कार्य के लिए निर्धारित विद्यालयों में भौतिक उपस्थिति में पठन पाठन बंद कर निर्वाचन प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया है। आयोग ने बताया है कि आज तक 72 जिलों के लिए 1,77,75,000 मतपत्रों की छपाई हो चुकी है और 33 जिलों के लिए आवश्यक 51,81,000 मतपत्रों की उगाही भी हो चुकी है। आयोग ने आज तक प्राप्त तथ्यांक के मुताबिक कुल 1,53,002 प्रत्याशियों ने उम्मीदवारी दर्ज करवाई है। ये जानकारी आयोग के सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल ने दी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने पांच दलीय गठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के दायित्व से विमुख न होने का सभी से आग्रह किया है। आज भक्तपुर की मध्यपुर ठिनी नगरपालिका में आयोजित एक कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने गठबंधन की भावना का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने का आग्रह किया। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि काठमांडू महानगरपालिका में ऐसे प्रमुख की आवश्यकता है जिसने जनता की समस्या को समझा है। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर पद की उम्मीदवार सृजना सिंह के संकल्प प्रस्ताव को सार्वजनिक करने के कार्यक्रम में महामंत्री थापा ने काठमांडू के मेयर पद पर महिला को लाने के अवसर से न चूकने का सभी से आग्रह किया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के लिए नेपाल को दक्षिण एशिया में ही मशहूर बनाने की जरूरत है। सातवें राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मूल समारोह समिति की आज मंत्रालय में हुई बैठक में मंत्री कार्की ने कहा कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता कायम करते हुए देश को समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में इस साल के राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए लोकतंत्र की आधारशिला व्यवसायिक और जिम्मेदार पत्रकारिता तय की है। गोरखा पत्र की स्थापना की तिथि को आधार मानकर 2073 बैसाख 24 गते से यह दिवस मनाया जा रहा है। बागमती प्रदेश सरकार ने मदन भंडारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति प्राध्यापक डॉ विश्वराज जोशी को निलंबित किया है। पदीय जिम्मेदारी पूरा न करने के आरोप में उनको निलंबित किया गया है और इस विषय पर जांच पड़ताल की जा रही है। ये जानकारी मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव यमलाल भूषाल ने दी। बता दें कि प्राध्यापक डॉ जोशी को 2077 श्रावण 16 गते 4 सालों के लिए उपकुलपति पद पर नियुक्त किया गया था। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गरौं। सबै प्रतिष्ठानहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न आनाकानी नगरौं।
नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय।
अब बाँकी समाचार। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 18 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वैक्सीन लेने वाले की संख्या 1,02,543 हुई है। नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति ने कहा कि आकाशीय ग्रह और पंचांग के लिए किए जाने वाले गणित में मेल कराने के लिए अनुसंधान शुरू किया जाएगा। आकाशीय ग्रह और पंचांग में उल्लेखनीय ग्रह गति के विषय पर अंतर होने के बाद अनुसंधान करने के लिए समिति ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहित सरोकार वाले निकायों के बीच विचार विमर्श शुरू हुआ है। ये जानकारी विकास समिति के कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुंगेल ने दी। मकवानपुर की हेटौड़ा उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 नागबस्ती में बर्ड फ्लू पाया गया है। नागबस्ती के मुर्गा व्यवसायी राजन खतिवाड़ा के आदर्श पोल्ट्री फार्म में रहे लेयर्स मुर्गों में बर्ड फ्लू पाया गया। ये जानकारी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केंद्र के प्रमुख डॉक्टर ब्रज किशोर ठाकुर ने दी। बता दें कि खतिवाड़ा के फार्म में मौजूद 4,000 मुर्गों में से 100 से अधिक मुर्गे मर चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन को हथियार भेजना यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्रो पेस्कोव ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रेस के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। ट्रेस ने अपने भाषण में अपील की थी कि यूक्रेन की सहायता के लिए सहयोगी देशों को सैन्य उत्पादन तेज करना होगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को अपना समर्थन तो व्यक्त किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि उनका समर्थन रूस के साथ सैन्य टकराव नहीं है। लेकिन पेस्कोव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, यूक्रेन में हथियार भेजने की प्रवृत्ति ऐसी कार्रवाई है जिससे पूरी महाद्वीप की सुरक्षा को खतरा है, इससे अस्थिरता फैल सकती है। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि यूक्रेन युद्ध में दखल देकर रूस के लिए सामरिक दृष्टि से खतरा पैदा करने वाले देश को बिजली की तेजी से जवाब मिलेगा। भीषण गर्मी और कोयले की भारी कमी के चलते भारत के कई हिस्सों में पावर कट शुरू हो गया। कई राज्यों में बिजली की रिकॉर्ड मांग और बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश तक उपभोक्ताओं को 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। बिजली कटौती से फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा प्रभावित है। मार्च से शुरू हुई गर्मी के बाद देश के एक बड़े हिस्से में अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी जारी है। तेज गर्मी होने के कारण गांव और शहरों में बिजली की मांग अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश में बिजली की कुल कमी 6 से 23 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है, जो मार्च में हुई कुल बिजली की कमी को पार कर गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकतंत्र और प्रवर्तनकारी पक्ष के उम्मीदवारों को निर्वाचित कर लोकतंत्र के आधार स्तंभ को मजबूत बनाने का प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा की अपील। पांच दलीय गठबंधन के चुनावी तालमेल के निर्णय का क्रियान्वयन करने का पार्टी के सभी तहों और निकायों को सभापति देउवा ने दिया निर्देश। स्थानीय तह चुनाव के लिए 72 जिलों के लिए मतपत्रों की छपाई हुई पूरी। 33 जिलों में भेजे जा रहे हैं मतपत्र। और पुतिन की धमकी के बाद यूरोप के लिए रूस से आई एक और चेतावनी। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।